दिन भर 30 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिनेमा दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी, कुछ हलकों में समर्थन तो कुछ में विरोध।
सवाल ये है कि जो नेशनल फ्लैग का जो कानून है उसमें तो ये लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नेशनल एंथम सिंग करते वक्त अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वो कानूनन जुर्म है।
सुनवाएंगे भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से एक मुलाकात।
देखिए, फैसला तो करना है कि हमने ताक़यामत इसी ताल्लुक में रहना है, एक दूसरे का दुश्मन बन के रहना है, या तब्दीली करनी है और दोस्त बन के रहना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है।
पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी चीन पर, यही होगा आज के दुनिया जहान का विषय। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरे देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सिनेमाघर में राष्ट्रगान और तिरंगे के सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। पेट्रोल को निर्यात करने वाले देशों की संस्था ओपेक कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने पर सहमत हो सकती है। इस खबर के आते ही तेल की कीमतों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। वियना में होने वाली बैठक से ठीक पहले सऊदी अरब, ईरान और इराक ने कहा है कि उन्हें पूरी आशा है कि कोई समझौता हो जाएगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फलीह ने कहा है कि उनका देश समझौते के लिए तैयार है। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन सालेह अल सदा का कहना था,
आई एम वेरी होपफुल दैट द पॉजिटिव टॉक्स विल कंटिन्यू हियर इन वियना।
मुझे पूरी आशा है कि वियना में सकारात्मक बातचीत होगी जिससे इस मसले का कोई हल निकल जाएगा। मार्केट में अस्थायित्व लाने और उसका संतुलन बनाए रखने की अहमियत को ओपेक पूरी तरह समझता है। इससे सभी देशों का भला होगा, हमारी अर्थव्यवस्था, वैश्विक तेल बाजार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये फायदेमंद होगा। ओपेक के जनरल सेक्रेटरी के शब्द। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन ब्रेनर ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सचेत किया है कि ईरान से परमाणु समझौता खत्म करना विनाशकारी और मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। BBC से एक खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही। उनका कहना था कि एक सरकार के लिए पिछली सरकार के जरिए किए गए समझौते को खत्म करना अभूतपूर्व होगा और इससे ईरान के भीतर परमाणु प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा और उस क्षेत्र के दूसरे देश भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे पूरे क्षेत्र में हथियारों की होड़ लग सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगली सरकार के लिए उस समझौते को खत्म करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सीरियाई शहर अलेप्पो से मिल रही खबरों के अनुसार सीरियाई सेना के जरिए भारी गोलीबारी के कारण बहुत सारे आम नागरिक मारे गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। दूसरी खबरों के अनुसार मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सीरियाई सेना पूर्वी अलेप्पो में बड़े ऑपरेशन चला रही है और हाल के दिनों में आधे से ज्यादा इलाकों पर सरकारी सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया है। शरणार्थियों के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का कहना है कि हाल के हफ्तों में म्यांमार से कम 10,000 रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी बांग्लादेश भाग गए हैं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि सभी को राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना होगा और स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाएगा। पिछले दिनों ऐसे वाकये हुए हैं जब लोग राष्ट्रगान के दौरान किन्हीं कारणों से खड़े नहीं हुए और उन्हें पीट दिया गया। विनीत खरे की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जाए तो ये जरूरी है कि लोग उसके प्रति इज्जत दिखाएं और ऐसा करने से लोगों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही कई प्रतिक्रियाओं में लोगों ने कहा है कि ऐसा करने से राष्ट्रभक्ति को लोगों पर थोपा जाएगा। अदालत ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजे तब थिएटर के सभी निकास मार्गों को बंद कर दिया जाए ताकि इससे राष्ट्रगान का असम्मान न हो। लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा आदेश पेश एक याचिका की प्रतिक्रिया में आया है। सरकार ने कहा है कि इस व्यवस्था को 10 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। सालों पहले थिएटर में लोग फिल्म के आखिर में चलाए गए राष्ट्रगान के दौरान खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे ऐसा होना खत्म हो गया। वर्ष 2003 में महाराष्ट्र में कानूनी तौर पर राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना अनिवार्य कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई वाक़े हुए हैं जब लोगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने के कारण पीट दिया गया। अक्टूबर में लेखक और विकलांगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले सलील चौधरी को, जो खुद व्हीलचेयर पर चलते हैं, उन्हें राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने पर पीट दिया गया। इससे ये बहस तेज हुई कि क्या लोगों से राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के लिए कहना उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन नहीं है? क्या ये किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना चाहता है या नहीं? और राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होने को किसी की राष्ट्रभक्ति को नापने का पैमाना बनाना क्या सही है या नहीं? दूसरी तरफ कई लोगों ने इस आदेश का स्वागत किया है। ट्विटर पर एक व्यक्ति ने कहा, 2 घंटे के मनोरंजन से पहले 2 मिनट खड़े होने पर लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? इस मुद्दे पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो फॉलो करना पड़ेगा ना। मगर अब सवाल ये है कि जो नेशनल फ्लैग का जो कानून है वो उसमें तो ये लिखा हुआ नहीं है, उसमें तो लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नेशनल एंथम सिंग करते वक्त अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वो कानूनन जुर्म है। और फिर जो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो है, प्रिवेंट करता है नेशनल एंथम को, तो उसको वो सजा है। फिर एक मिनिस्टर होम अफेयर्स का ऑर्डर रिलेटिंग टू नेशनल एंथम, वो ये बोलता है कि जब भी नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा तो आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, मगर उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई बैठता है तो क्या होगा। फिर कई 2 महीने पहले एक जर्नलिस्ट को जो हैंडीकैप थे, बेचारे उठ नहीं सके, तो थिएटर में उनको असॉल्ट कर दिया गया। और हमारे लेडीज को भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो फिर ये सब चीजें हैं। बेहतर होगा कि गवर्नमेंट जो है इसका एक प्रॉपर एक्ट बना दे, ठीक होगा।
पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान लोगों को खड़ा होना जरूरी नहीं है। ये आदेश राज्य गृह मंत्रालय के उस आदेश के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि खड़े होने से फिल्म स्क्रीनिंग में बाधा आती है और इससे राष्ट्रगान की मर्यादा बढ़ने के बजाय अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा होती है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने BBC से बातचीत में कहा है कि भारत के साथ 2 तरफा बातचीत को लेकर कोई प्रोग्राम तय नहीं है और अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का मसला अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है और दोनों मुल्कों को मेज पर बैठकर ही इसे सुलझाने से बात बनेगी। सुनिए नितिन श्रीवास्तव, विनीत खरे, पंकज प्रियदर्शी से हुई इस बातचीत के अंश।
पहला सवाल, बुनियादी सवाल, भारत पाकिस्तान संबंध, आपसे हर कोई ये सवाल पूछता है और जाहिर है कि ये सवाल पुराना सा भी लगता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो एक कॉन्टेक्स्ट नया होता है। अभी बड़ा अजीब सा एक एनवायरनमेंट है जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेहतर हो सकते हैं या रुके रहेंगे या स्टेलमेट है।
देखिए, फैसला तो करना है कि हमने ता क़यामत इसी ताल्लुक में रहना है, एक दूसरे का दुश्मन बन के रहना है, या तब्दीली करनी है और दोस्त बन के रहना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अवाम पाकिस्तान में भी और यहाँ भारत में भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। अब ताल्लुकात बेहतर किस तरह हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मसाइल किस तरह हल होंगे, तभी होंगे जब हम मेज़ पर बैठेंगे, कोई सोलूशंस निकालेंगे, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का मसला है, सियाचिन है, सर क्रीक है, दहशतगर्दी के इश्यूज़ हैं।
आपके मुताबिक जब ये फैसला हो, आप लोग कर लेंगे कि मेज़ के आमने सामने बैठ के उसको हल करना है तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है अब्दुल बासित साहब कि कुछ समय बाद जो रेटरिक है, जो बयानबाजी है, वो बहुत तेज हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी अप्रैल में इसी साल आपका बयान था कि भारत नहीं चाहता कि ताल्लुकात बेहतर हो।
नहीं, मैंने
उस वक्त क्या डिफरेंट था और अभी क्या डिफरेंट?
मैं कभी ये बात नहीं कह सकता कि भारत नहीं चाहता, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ नेशनल कंसेंसस है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सब के मैनिफेस्टो में ये है कि हमने भारत के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर बेहतर करने हैं। हमारे भारत के साथ ताल्लुकात अब कोई इलेक्शन इशू नहीं रहा, اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریلی میں جائیں اور بھارت بیشنگ کریں تو آپ کو ووٹ مل جائے گا. اب اس قسم کی پاکستان میں قطعاً کوئی بات نہیں رہی. ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے اسلام آباد میں ایک فیلنگ ہے کہ بھارت جموں اور کشمیر میں کوئی سبسٹینشل اور ریزلٹ اورینٹڈ بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ آپ ضرور میرے سے اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ جموں اور کشمیر ہمارا ایک واحد ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں.
لیکن اسی بات پر جو بھارت کا بنیادی جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے.
دیکھیے یہ تو اچھا, اس پہ بھی میں بہت لمبی طویل گفتگو کر سکتا ہوں. اقوام متحدہ کی آپ ریزولوشنز لے لیجیے, اس میں بھارت نے کمٹ کیا ہے کہ وہ پلیبسٹ وہاں پہ ہوگا جموں اور کشمیر میں, تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ جموں اور کشمیر کے لوگ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کو جوائن کرنا. تو بھارت نے تو کئی بار یہ مانا ہے کہ جموں, اور ابھی آپ ریسنٹلی 2015 جب سشما سوراج صاحبہ گئیں پاکستان اور ہم نے ایک بائیلیٹرل کمپریہنسو بائیلیٹرل ایگریمنٹ فریم ورک پہ ایگری کیا, اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے کہ اس مسئلے کو سالو کرنا سے بات چیت کرنی ہے.
پنکج,
جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈیسائڈ کرنا ہے یا جو بھی کرنا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب بات چیت کی بات دونوں پکش اس پہ سہمت ہو جاتے ہیں کہ بات چیت ہونی ہے, لیکن تبھی کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے جس سے پوری بات چیت ڈیریل ہو جاتی ہے, جیسے اس سمے اڑی کو لے کر ہوا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی ایسی پہل کرنی چاہیے جس سے بات چیت دوبارہ پٹری پہ آ سکے؟
دیکھیے اب اڑی کا ایک واقعہ ہوا, اس کی وجہ سے اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا تو مذاکرات تو پہلے بھی نہیں ہو رہے تھے. اڑی کا تو واقعہ 18 ستمبر کو ہوا, لیکن مذاکرات کا آپ نے فیصلہ ہم نے دسمبر میں کیا تھا 2015 میں. تو اس دوران یا پٹھان کوٹ کو آپ لے لیجئے, اس کے بعد 2 جنوری کو پٹھان کوٹ ہو گیا, تو اڑی کے واقعے سے کیا تعلق ہے ہمارے مذاکرات کا مجھے سمجھ نہیں آئی. اور پھر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اڑی کے واقعے میں پاکستان یا پاکستان میں کچھ لوگ وہ انوالو تھے؟
کیا اس کے پیچھے انڈین گورنمنٹ کا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کیا؟ پٹھان کوٹ اٹیک کے بعد جو انویسٹیگیشن میں جو رسپانس ملا پاکستان سے, کیا اس کا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کیا جو اڑی میں دیکھا؟
آئی ڈونٹ نو, لیکن میرے خیال میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہونا نہیں چاہیے. پٹھان کوٹ میں تو پاکستان نے آؤٹ آف دا وے جا کر کوآپریشن کیا ہے بھارت کے ساتھ.
جی بنیت
مسی صاحب, آپ دونوں دیشوں کے بیچ نارملائزیشن آف ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, لیکن انفلٹریشن لگاتار جاری ہے, یہ بھارت میں سوچ ہے. آپ نے پٹھان کوٹ کا ذکر کیا, اڑی کا واقعہ ہوا, اور لیٹسٹ جو اٹیک ہوا ہے جس میں 7 بھارتی سینک مارے گئے ہیں, تو جب انفلٹریشن جاری ہے, جبکہ پاکستان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی کہ جو پاکستان کی جو دھرتی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا ملٹنٹ اٹیکس کا کسی دوسرے دیش میں, اس کے باوجود بھی جاری, اس کے بعد سے بھارت میں اس بات کو لے کر بہت غصہ ہے, جس طرح سولجرز کی باڈیز کے ساتھ میوٹیلیشن ہوا ہے اس کو لے کر بہت غصہ ہے. تو ایسے وقت میں جب دونوں دیشوں میں جب انڈیا میں جس طرح سے ملٹنٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس کا کنڈمنیشن بھی پاکستان کی طرف سے نہیں آتا ہے, کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہوں گے؟
جو مسٹرسٹ کا برج ہے, جو
دیکھیں بحثیت سفارتکار تو میں امید رکھتا ہوں, میرا کام یہی ہے کہ میں برجز بلڈ کروں, تعلقات کو بہتر بنانے کی اپنے تئیں حت الوسا کوشش کروں بحثیت سفارتکار. لیکن جو باتیں آپ نے کی, میں بہت سے آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کی جو اریسٹ ہم نے پاکستان میں کی بلوچستان, اس کے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہیں, جو مداخلت ہمارے ہاں ہو رہی ہے, جو انسٹیبلٹی ہمارے ہاں پیدا کی جا رہی ہے, جس طرح افغانستان کی ٹیریٹری کو یوز کیا جا رہا ہے, تو ہمارے یہاں پاس بھی تو ایویڈنس ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے مسائل حل کریں. یہ صرف یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی صرف آپ کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا بھی ایشو ہے, اور بہت سیریس ایشو ہے.
بھارت میں پاکستان کے اچائیوکت عبد الباسط سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواددتا. ایک پرانی کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. بھارت پاکستان چین کے رشتوں میں یہ بات کئی بار کہی سنی جاتی ہے. حال ہی میں پاکستان نے جب گوادر پورٹ کی سرکشا کے لیے چین کی نوسینا تعینات کرنے کی بات کہی تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں پھر یہی بات گونجی. گوادر پورٹ چین پاکستان آرتھک گلیارے کا حصہ ہے, جسے پاکستان کے لیے آرتھک جگت میں بڑا بدلاؤ لانے والا قدم مانا جا رہا ہے. چین کی اس پریوجنا میں حصے داری صرف آرتھک ہتوں کے لیے ہے یا پھر سامرک ہت بھی شامل ہے؟ نکھل رنجن نے دنیا جہان میں آج یہی جاننے کی کوشش کی ہے.
دنیا جہان, عمر کے قریب 7 دشک دیکھ چکا پاکستان آرتھک مورچے پر لگاتار مشکلیں جھیل رہا ہے, اور 18 کروڑ کی آبادی کا زیادہ تر حصہ غربت کو ہی اپنی قسمت مانتا ہے. ऐसे में जब उसके लिए विधाता की भूमिका निभाते आए देश भी बदली परिस्थितियों में उससे किनारा कर रहे हैं, तो वो आखिर किसके भरोसे अपना इकबाल बुलंद रखे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के लिए इस वक्त वही भरोसा है जिसका हाथ पकड़कर इस मुल्क ने अपनी मुश्किलों से पार जाने का ख्वाब सजाया है। करीब 86 अरब डॉलर के निवेश वाली ये परियोजना चीन के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ेगी। सड़क से लेकर बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र और आर्थिक गतिविधियों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास का एक ऐसा खाका तैयार किया गया है जो पाकिस्तान को दुनिया के आर्थिक नक्शे पर एक मजबूत केंद्र के रूप में खड़ा कर सके। विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा,
हर तरफ जो कॉरिडोर है या ग्वादर पोर्ट है उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज आने वाले दिनों में होने जा रही है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और IMF दोनों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क पहल है और आने वाले वक्त में CPEC और ग्वादर पोर्ट एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन के निकलेंगे। तो ग्वादर 46 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें से 18 बिलियन एनर्जी के रिसोर्सेज में जाएगा, 9 रोड प्रोजेक्ट्स में जाएगा। ये दोनों अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का पार्ट हो जाएंगे और बाकी इन्वेस्टमेंट बाद में।
इसलिए कोई हैरानी नहीं कि पाकिस्तान की सरकार ये ऐलान कर रही है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। इसी दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा में चीन की नौसेना को तैनात करने की बात कही है। आखिर पाकिस्तान चीन की फौज को अपने इलाके की सुरक्षा क्यों सौंपना चाहता है? रक्षा मामलों के जानकार और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर,
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनके बीच में कुछ तनाव की बात हो रही, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चीन का जो समर्थन है वो क्षेत्रीय माहौल में उसका वर्णन और उसको रेखांकित करना चाहता है और उस संदर्भ में खास भारत के खिलाफ इस वक्त जो भी कार्रवाई हो रहा है, जो भी तनाव है लाइन ऑफ कंट्रोल और उरी के बाद, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन का समर्थन को बार बार दोहराना चाहता है और खास सागर या मैरिटाइम क्षेत्र में जहां पाकिस्तान के अंदर अंदाजा यही है कि भारत की जो नौसेना की जो क्षमता है संपूर्ण तरीके से ये पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है और इसलिए पाकिस्तान एक प्रकार से अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता है।
पाकिस्तान ने चीन की नौसेना को तैनात करने की बात तब कही है जबकि ये पहले ही तय हो चुका है कि CPEC की सुरक्षा के लिए एक उन्नत फौज का गठन किया जाएगा जो खास तौर से इसी काम के लिए प्रशिक्षित और तैयार होगी। करीब 10,000 जवानों वाली ये फौज जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। इस वक्त भी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में वहां तैनाती है और सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर,
ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चीन से लेके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे और फिर ग्वादर पहुंचना। सबसे बड़ी जो इशू है इस सारे चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो सिक्योरिटी की है, क्योंकि जब तक इस कॉरिडोर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और ये ऐसी ऐसी जगहों से जाती है जहां प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का और बलूचिस्तान को तो आपको पता है कि प्रॉब्लम है, तो पूछना ये है पाकिस्तानियों का कि भाई सिक्योरिटी हम सारा चाइना के हाथ में देंगे कि पाकिस्तान भी उसमें कोई पार्ट लेगा। तो जहां तक तो ये लैंड का जमीन की सिक्योरिटी है चीन से ग्वादर तक, उसके लिए पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स खड़ा किया है, उसको ट्रेन किया गया है। ये सारे ट्रक पाकिस्तान एंटर करते हैं, वहां से पाकिस्तानी सिक्योरिटी शुरू हो जाती है ग्वादर तक। अभी आगे पानी में चाइनीज चाहते हैं कि वो अपने जहाज लेके आए ताकि वो सिक्योरिटी दे सके कुछ जगहों में।
पाकिस्तान अपने इलाकों और हितों की रक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपता है ये उसे तय करना है, लेकिन अब तक चीन की पहुंच से दूर रहे इलाकों में उसकी आमद रफ्त बढ़ने की आशंका भारत और कई दूसरे देशों को चिंता में डाल रही है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जिस परियोजना को आर्थिक नजरिए से अहम बताया जा रहा है उसमें सामरिक हितों की हिस्सेदारी कितनी है। राहुल मिश्रा,
पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट आर्थिक तौर से ज्यादा सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान उसको प्रोजेक्ट भी इसी तरह कर रहा है। चाइना के साथ उनके रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है ही है। साथ में अभी ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि रूस भी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो ग्वादर पोर्ट में अपने भी शिप्स भेजेगा और जो व्यापार से जुड़े मुद्दे हैं उनमें रूस पाकिस्तान और चीन के बीच में संबंध घनिष्ठ हो गए। ईरान की विजिट के दौरान जो है शी जिनपिंग जो चीनी राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ये बात कही कि हम ईरान को भी साथ लाएंगे। चीन अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है और ये चाहता है कि एशिया में उसका डोमिनेशन बना रहे। अमेरिका जो कि जिसने यूएस पिवट ऑफ टूवर्ड्स एशिया की पॉलिसी लाई, अब मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद शायद उसमें थोड़ा सा वो कमजोर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी चीज है कि चीन चाहता है कि उसके आर्थिक जो ताना बाना है एशिया में और इंडियन ओशन में वो भी मजबूत रहे और उसके साथ साथ उसकी सामरिक हर जगह पे प्रेजेंस रहे। और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव इसके वन बेल्ट वन रोड जिसका कि सीपीसी एक पार्ट है उसके थ्रू मुझे लगता है कि वो रियलाइज हो रहे हैं।
पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे में बंदरगाह के शामिल होने के कारण रक्षा मामलों के जानकार इसे समुद्री ताकत को बढ़ाने का जरिया भी मान रहे हैं। सागर की लहरों पर मजबूत चहलकदमी जमीन पर खड़े लोगों को कितना आत्मविश्वास और सुरक्षा देती है इसका एहसास तो पाकिस्तान को भी है। सी उदय भास्कर तो साफ कहते हैं, पृथ्वी पर मौजूद तीन सागरों को जिसने जीत लिया दुनिया उसी की मुट्ठी में है।
विश्व के तीन महासागर हैं जिसको नेविगेबल कहा जाता है, पैसिफिक, अटलांटिक तथा इंडियन, हिंद महासागर। और जितना भी इतिहास का जो प्रभाव हुआ है वो इस तीनों महासागर की उनमें से कम दो के ऊपर किसी भी शक्तिशाली देश का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सबसे पहले पोर्तुगल और स्पेन ने अपना कंट्रोल होने साबित किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कॉम्पिटिशन था, इंग्लैंड ने उसमें सफलता प्राप्त किया और हमने देखा कि करीब 90 साल ब्रिटिश पावर जो है वो बहुत ही अहम था दुनिया में और वो केवल नेवल पावर के ऊपर ब्रिटेन ने अपने आप को सबसे अहम कॉलोनियल पावर बनाया था। ये एक प्रकार से उसी इतिहास का एक दूसरा पन्ना है कि हिंद महासागर की अहमियत बढ़ गया है चीन के लिए नेवल / मैरिटाइम कैपेबिलिटी या क्षमता और साथ साथ हिंद महासागर में एक बेस या प्रेजेंस, ये बहुत स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है और उसी दिशा में वो पाकिस्तान के साथ अपना सामरिक भागीदारी को बढ़ोतरी दे रहे हैं।
चीन की तरफ संदेह की नजरें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा कायम करने के अलावा उसने कई ऐसी जगहों पर अपने कदम बढ़ाए हैं जहां से सागर की सीमा में चल रही हरकतों को प्रभावित किया जा सके। अमेरिका को चुनौती देने के लिए जल और जमीन की एक एक इंच को वो तौल रहा है, फिर ग्वादर से तो भारत को भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चीन की कोशिश है, भारत ने भी अपनी क्षमता के हिसाब से अपने दांव चले हैं। ईरान के साथ मिलकर चाबहार का बंदरगाह बनाना भी इसी का नतीजा है। मरियाना बाबर,
देखिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक किस्म की सुपर रीजनल सुपर पावर की लड़ाई है भारत और चीन के दरमियान। उसमें आपको नजर आता है कि अमेरिका जो है वो भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कि चीन उठ ना सके। ये मैं कश्मोकश जो है मेरे नजदीक बिल्कुल बेमानी है। देखिए जो मुल्क तरक्की करना चाहे वो रास्ते ढूंढेगा। अभी भारत को इजाजत नहीं है कि वही वाघा क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जा सके, तो भारत ने फिर ईरान में एक पोर्ट वहां बना कि भाई सेंट्रल एशिया रिपब्लिक हम ईरान के थ्रू जाएंगे, ठीक है पाकिस्तान अगर हमको अफगानिस्तान का रास्ता नहीं देता है तो रास्ते निकल आते हैं। बेहतर तो ये होगा कि इस पूरे सूबे में एक किस्म की जो टेंशन है उसको कम किया जाए। और देखिए ये अगर भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वो अपना एक इनकी एम्बिशन होते हैं कि भाई हम आगे बढ़े और इकोनॉमिक पावर बने, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो जी एक खेल है, ये तो तारीख ने दिखाया कि इस किस्म के ग्रेट गेम्स होते रहते हैं और वो हम लोग को कबूल करना पड़ेगा। मगर जो इशू है वो ये है कि ये नहीं आप अपनी बेहतरी चाहें तो किसी और को आप कोई नुकसान पहुंचाएं।
चीन की भारी मदद के बावजूद पाकिस्तान के लिए इस परियोजना को पूरा करना एक टेढ़ी खीर है। चुनौतियां सिर्फ बाहर से ही नहीं देश के भीतर से भी हैं। मसला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, इस परियोजना की सफलता का भी है। भारी लागत से तैयार ग्वादर पोर्ट को मुनाफा कमाकर कर्ज भी चुकाना है। सरहदों पर अमन हो तो कारोबार के चल निकलने की उम्मीद बढ़ जाती है, और इसके लिए दूसरे पड़ोसियों के साथ भी रिश्तों में संतुलन रखना जरूरी होगा। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने ईरान परमाणु डील न तोड़ने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मूर्खता की हद होगी। BBC को दिए इंटरव्यू में ब्रेनन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर रूस के साथ किए वादों पर सावधानी बरतने की बात भी कही। CIA के डायरेक्टर के तौर पर जॉन ब्रेनन का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। और ब्यौरा दे रही हैं तृप्ति श्रीवास्तव।
अमेरिका के CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने पहली बार BBC को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी और सलाहें दी। जॉन ब्रेनन ने कहा कि नए प्रशासन को कुछ क्षेत्रों में विवेक और अनुशासन से काम करने की जरूरत है। इसमें आतंकवाद पर भाषा का इस्तेमाल, रूस से संबंध, ईरान न्यूक्लियर डील और CIA की गुप्त क्षमताओं का काम करना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में ईरान के साथ हुई परमाणु डील को खत्म करने की बात कही थी। इस मुद्दे पर ब्रेनन ने उनकी जगह आने वाली ट्रंप की नई टीम को चेतावनी देते हुए इसे ना तोड़ने की सलाह दी। ब्रेनन ने कहा कि अगर वो अमरीका की ईरान से हुई परमाणु डील को तोड़ते हैं तो ये मूर्खता की हद होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम क्षेत्रीय हथियारों की होड़ शुरू कर देगा। जॉन ब्रेनन का मानना है कि ये कदम ईरान के कट्टरपंथियों को मजबूत बना सकता है।
America's best days are ahead of us. I think you're going to see America continue to lead the world in this century.
एक प्रशासन का पिछले प्रशासन के समझौते को खत्म करना अनोखी बात होगी, और ये ईरान में परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकता है, जिससे इस क्षेत्र के कई राज्य सैन्य संघर्ष के साथ अपने खुद के परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अगला प्रशासन इसे तोड़ता है तो ये मूर्खता की हद होगी।
रूस को लेकर भी CIA डायरेक्टर ब्रेनन ने नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सावधान किया। उनका कहना है कि जनवरी में जब ट्रंप अपना कार्यभार संभाले तो रूस के वादों से सावधान रहें। उन्होंने सीरिया के हालातों के लिए रूस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अक्सर रूस जहां काम करता है वहां वो उन देशों के नुकसान से ज्यादा सिर्फ अपने देश के हितों को देखता है। CIA के डायरेक्टर के तौर पर जॉन ब्रेनन का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने नए कैबिनेट की और नियुक्तियों की घोषणा की तैयारी कर रहे हैं। कट्टरपंथी रिपब्लिकन कांग्रेसी 52 साल के माइक पोम्पियो का नाम अगले सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के प्रमुख के लिए नामांकित किया गया है। गोल्डमैन सैक्स के पूर्व साथी स्टीवन मनुषिन नए वित्त मंत्री हो सकते हैं। मिट रोमनी को विदेश मंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। ये हैरान कर देने वाला नाम है, क्योंकि मिट एक बार डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज कह चुके हैं। अब मिट का कहना है कि राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए डोनाल्ड ट्रंप देश के लिए सही नेता हैं। ट्रंप से मुलाकात के बाद मिट रोमनी ने कहा,
मैं सोचता हूं कि हमारे लिए अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप अमेरिका को इस सदी में दुनिया में लगातार सबसे आगे बढ़ते देखेंगे। ये मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चाओं में देखा है, साथ ही उनकी जीत वाली रात को उनके भाषण में भी ये नज़र आया, उनके चुने हुए लोगों में नजर आया। इन सब बातों को साथ देखो तो लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे।
इसके अलावा ओबामा की नीतियों के आलोचक रहे 62 साल के टॉम प्राइस स्वास्थ्य मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निक्की हैली संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत, और बेट्सी डिवोस को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है।
CIA के डायरेक्टर की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी। और सभा की समाप्ति से पहले सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरे देश के सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। पेट्रोल को निर्यात करने वाले देशों की संस्था ओपेक कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने पर सहमत हो सकते हैं। इस खबर के आते ही तेल की कीमतों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सचेत किया है कि ईरान से परमाणु समझौता खत्म करना विनाशकारी और मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। سیریائی شہر ایلپو سے مل رہی خبروں کے انوسار سیریائی سینا کے ذریعے بھاری گولی باری کے کارن بہت سارے عام ناگرک مارے گئے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کاریکرم آپ تک پہنچانے میں مدد کی اجیت سارتھی نے، ریحان فضل کو، سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نمسکار۔